पृष्ठ संख्या 61, अध्याय 5, सविनय अवज्ञा आंदोलन। गांधी का दूसरा महत्वपूर्ण आंदोलन सविनय अवज्ञा आंदोलन था। गांधी ने यह आंदोलन ऐसे समय में चलाया जब एक तरफ विश्व के महान आर्थिक संकट ने और दूसरी तरफ सोवियत संघ की समाजवादी सफलताओं और चीन में चल रहे क्रांति के प्रभाव ने विश्व के विभिन्न देशों में क्रांति की परिस्थिति पैदा कर दी। पूंजीवादी देशों में श्रमजीवी जनता समाजवादी क्रांति की तरफ और पराधीन देशों में आम जनता राष्ट्रीय मुक्ति क्रांति की तरफ तेज कदम उठाने लगी। यह वही समय था जब विभिन्न साम्राज्यवादी देशों और पूंजीवादी देशों में समाजवादी क्रांति को रोकने के लिए फासीवाद को बुर्जुआ वर्ग ने अस्त्र बनाया था। मरते पूंजीवाद ने वित्तीय पूंजी की फौजी तानाशाही का फासीवाद का रूप धारण किया था। देश के अंदर की विभिन्न घटनाओं ने दुनिया की इन घटनाओं के साथ मिलकर सविनय अवज्ञा को जन्म दिया। सविनय अवज्ञा आंदोलन के उदय के निम्न कारण थे। साइमन कमीशन के गठन में भारतीयों की अवहेलना। ब्रिटिश सरकार ने 1919 के अधिनियम को पारित करते हुए यह कहा था कि वह 10 वर्ष के पश्चात इन सुधारों की समीक्षा करेगी, परंतु नवंबर 1927 में ही ब्रिटिश सरकार ने सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में एक 7 सदस्यीय केवल अंग्रेज लोगों का आयोग नियुक्त कर दिया। इससे भारत के लोगों में बहुत निराशा हुई। राष्ट्रवादी नेता यह प्रश्न करने लगे कि यह आयोग कैसे भारत के भावी संविधान के विषय में निश्चय कर सकता है। पृष्ठ संख्या 62, विशेषकर जब इसमें भारत का कोई भी प्रतिनिधि नहीं है। वास्तव में भारतीय लोगों के मन में स्वशासन की भावना इतनी जाग उठी थी कि अब वे स्वीकार करने को तैयार नहीं थे कि केवल ब्रिटिश सांसद ही उनके भाग्य का निर्धारण करे। तेज बहादुर स्प्रू ने भारतीयों को इससे बाहर रखना जानबूझकर भारतीयों का अपमान करना है, क्योंकि इससे न केवल भारतीय को निम्न स्थान दिया गया है अपितु अपने देश का संविधान बनाने की प्रक्रिया में भाग लेने का भी अधिकार उन्हें नहीं दिया गया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने दिसंबर 1927 में मद्रास में आयोजित अपने अधिवेशन में यह निश्चय किया कि साइमन आयोग का प्रत्येक चरण पर तथा हर संभव तरीके से बहिष्कार किया जाए। सदस्यों ने आयोग को देश के लिए एक क्षति तथा अपमान की संज्ञा दी और कहा कि इससे भारतीय लोगों के बुद्धिजीवियों तथा आत्मसम्मान की जानबूझकर अनदेखी की गई है। कांग्रेस के युवा दल ने आयोग के विरुद्ध सभी स्थानों पर काले झंडे के प्रदर्शन की व्यवस्था की। स्थान स्थान पर हड़तालें हुई जिसमें पुलिस ने कई स्थानों पर बल का प्रयोग किया। इससे भारत में अंग्रेजी प्रशासन तथा पुलिस राज के विरुद्ध भावनाएं और भी भड़क उठी। नेहरू रिपोर्ट की अस्वीकृति। लॉर्ड बर्कनहार्ट ने भारतीयों को यह चुनौती दी कि भारत के लोग स्वयं एक ऐसे विधान का निर्माण कर ब्रिटिश संसद के सामने प्रस्तुत करें जिसको उन्होंने सर्वसम्मति से तैयार किया हो। भारतीयों ने इस चुनौती को स्वीकार किया। भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की गई। तेज बहादुर स्प्रू, अली इमाम, MS अने, सरदार मंगरू सिंह, शुएब कुरैशी, GR प्रधान और सुभाष चंद्र बोस समिति के सदस्य नियुक्त हुए। समिति ने 3 महीने के कड़े परिश्रम के बाद एक स्मरणीय रिपोर्ट प्रस्तुत की। यह रिपोर्ट नेहरू रिपोर्ट के नाम से विख्यात हुई। इस रिपोर्ट में भारत की भावी शासन व्यवस्था से संबंधित निम्नलिखित सैद्धांतिक सुझाव दिए गए। पहला, भारत को औपनिवेशिक स्वराज प्रदान किया जाना चाहिए और उसका स्थान ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत अन्य उपनिवेशों के समान होना चाहिए। दूसरा, केंद्र में पूर्ण उत्तरदायी शासन की स्थापना होनी चाहिए। भारत के गवर्नर जनरल को लोकप्रिय मंत्रियों के परामर्श पर तथा संवैधानिक प्रधान के रूप में कार्य करना चाहिए। पृष्ठ संख्या 63। तीसरा, केंद्रीय व्यवस्थापिका सभा द्विसदनीय हो और मंत्रिमंडल उसके प्रति उत्तरदायी हो। निम्न सदन का निर्वाचन वयस्क मताधिकार पर प्रत्यक्ष पद्धति से हो और उच्च सदन का परोक्ष पद्धति से। चौथा, प्रांतों में भी केंद्र की भांति उत्तरदायी शासन की स्थापना हो। पांचवा, केंद्र और प्रांतों के मध्य शक्ति विभाजन की एक योजना प्रस्तुत की गई जिसमें अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र को प्रदान की गई। छठा, सांप्रदायिक निर्वाचन का अंत कर उसके स्थान पर संयुक्त निर्वाचन व्यवस्था का सुझाव दिया गया। साथ ही साथ यह भी सिफारिश की गई कि अल्पसंख्यक वर्गों को उनकी जनसंख्या के आधार पर आरक्षण प्रदान किया जाए। सातवां, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत को ब्रिटिश भारत के अन्य प्रांतों के समान वैधानिक स्तर प्राप्त होना चाहिए। सिंध को मुंबई से अलग कर स्वतंत्र प्रांत बनाया जाए। नवा, रिपोर्ट में मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया और उन्हें संविधान में स्थान देने की सिफारिश की गई। दसवां, रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि देशी रियासतों के अधिकारों तथा विशेषाधिकारों की रक्षा की व्यवस्था की जाए। साथ साथ उन्हें चेतावनी भी दी गई कि भारतीय शासन व्यवस्था में उन्हें तभी सम्मिलित किया जाएगा जब वह अपनी रियासतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना के लिए तैयार हो जाएंगे। बीरकेश्वर प्रसाद सिंह का कहना है कि नेहरू रिपोर्ट के संबंध में राजनीतिक दलों की भिन्न भिन्न प्रतिक्रियाएँ हुई। कांग्रेस का युवक दल, जिसके नेता जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस थे, रिपोर्ट को पूर्ण स्वतंत्रता के आधार पर ही स्वीकार करने को तैयार थे, लेकिन मोतीलाल नेहरू के हस्तक्षेप में दोनों में समझौता हुआ और उक्त प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। 1928 के कलकत्ता अधिवेशन में कांग्रेस ने यह प्रस्ताव पास किया कि सर्वदलीय समिति नेहरू कमेटी की रिपोर्ट में शासन विधान की जो योजना प्रस्तुत की गई है उस पर विचार करने के उपरांत कांग्रेस उसका स्वागत करती है और उसको भारत की राजनीतिक व सांप्रदायिक समस्याओं का समाधान तथा निराकरण करने में बहुत अधिक सहायता देने वाली समझती है। पृष्ठ संख्या 64, और अपनी समस्त सिफारिशों को सर्वसम्मति से पास करने के लिए कमेटी को बधाई देती है। मुस्लिम लीग में नेहरू रिपोर्ट के संबंध में पर्याप्त मतभेद था। राष्ट्रवादी मुसलमान, जिनके नेता डॉक्टर अंसारी और मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद थे, इसको पूर्णतः स्वीकार करने के पक्ष में थे। दूसरा गुट, जिसके नेता मोहम्मद शफी थे, इसे पूर्णतः अस्वीकृत करना चाहते थे। जिन्ना के नेतृत्व में दूसरा गुट ऐसे संशोधन करवाना चाहता था जो इसके वास्तविक रूप को ही नष्ट कर देते, जैसे मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल और धारा सभाओं तथा मंत्रिमंडलों में अधिक स्थान की मांग। जिन्ना ने नेहरू रिपोर्ट के विकल्प के रूप में 14 सूत्रीय कार्यक्रम प्रस्तुत किया। देशी रियासतों के नरेशों ने भी नेहरू रिपोर्ट का विरोध किया क्योंकि यह उनकी सार्वभौम सत्ता को नष्ट करता था। ब्रिटिश सरकार का विरोधी रुख स्वाभाविक ही था। नेहरू रिपोर्ट में कहा गया कि यदि 31 दिसंबर 1928 तक सरकार ने इस रिपोर्ट को मंजूर नहीं किया तो कांग्रेस अपना अहिंसक आंदोलन पुनः प्रारंभ कर देगी तथा इस बार आंदोलन के कार्यक्रम में लगान न देना भी शामिल होगा। इस तरह नए साल की शुरुआत में स्थिति विस्फोटक हो गई थी। श्रमिकों की हड़ताल तथा आतंकवादी करना में पुनः सिर उठाने लगे थे। ऐसी स्थिति में देश को उथल पुथल से बचाने के लिए कहां एक ओर लोक सुरक्षा विधेयक पास करके सरकार ने क्रांतिकारियों और आतंकवादियों के खिलाफ षड्यंत्र केस चलाया, वहीं दूसरी ओर वायसराय ने कांग्रेस के साथ समझौता करने की पहल भी की। मेरठ षड्यंत्र के मुकदमे में कम्युनिस्ट नेताओं ने अपने बयान में कहा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन काफ़ी हद तक क्रांतिकारी आंदोलन को भंग करने का साधन था। भारतीय पूंजीपति वर्ग साम्राज्यवाद का विरोध नरमी या गर्मी के साथ कर सकता है, लेकिन वह उसके विरुद्ध क्रांति नहीं कर सकता। जब जनक्रांति का खतरा पैदा होगा तब वह प्रत्यक्ष और सक्रिय रूप से क्रांति विरोधी हो जाएगा और जनता के विरुद्ध साम्राज्यवाद का साथ देगा। 1929-30 की आर्थिक मंदी। 1929-30 में विश्व में जो आर्थिक मंदी आई उसका प्रभाव भारत में भी हुआ। विश्व की मंडियों में रुई के भाव गिर गए और इसका भारतीय निर्यात पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। पृष्ठ संख्या 65। मुंबई की बहुत सी मिलें बंद हो गईं और बहुत से श्रमिक बेकार हो गए। इससे कृषकों और श्रमिकों में अशांति फैल गई। मुंबई कपड़ा उद्योग के दयनीय तथा युद्धप्रिय श्रमिकों ने साम्यवादियों के नेतृत्व में पहल की और उसके पीछे कलकत्ता के पटसन के कारखानों में काम करने वाले श्रमिकों ने तथा जमशेदपुर के लोहा तथा इस्पात के कारखानों में काम करने वाले श्रमिकों ने उनका अनुसरण किया। फिर रेलों में हड़तालें हुई, व्यापार संघ की गतिविधियां भी जोर पकड़ने लगी और श्रमिक राजनीतिक रूप से जागृत हुए। दिसंबर 1928 में हुए कांग्रेस के अधिवेशन के समय 10,000 श्रमिकों का जुलूस कांग्रेस के साथ अपनी एकता प्रदर्शित करने के लिए कांग्रेस के साथ आ मिला और भारत की स्वतंत्रता के समर्थन में अपनी एकता प्रदर्शित की और कांग्रेस के नेताओं से प्रार्थना की कि वे पूंजीपतियों द्वारा शोषण के विरुद्ध उन्हें अपना समर्थन प्रदान करें। 1928 में गुजरात में वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में हुए बारदोली सत्याग्रह में ग्रामीण क्षेत्रों में होने वाली अशांति के चिन्ह उभर कर सामने आए। युवक वर्ग में अशांति। क्रांतिकारी आतंकवादी आंदोलन की पुनः उठती हुई लहर तथा छात्र संघों की बढ़ती हुई संख्या से उत्पन्न युवक अशांति भी स्पष्ट हो रही थी। लाहौर षड्यंत्र केस के फलस्वरूप सरदार भगत सिंह, यतीन्द्रनाथ दास, राजगुरु, सुखदेव तथा अन्य लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। 1928 और 1929 में छात्रों के कई संगठन अस्तित्व में आए, जैसे कि प्रांतीय युवक संघ तथा प्रांतीय छात्र संघ, जिनकी शाखाएं समस्त बंगाल में बन गईं। इसी प्रकार महाराष्ट्र कॉन्फ्रेंस ने जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में पुणे में सम्मेलन किया। अक्टूबर 1929 में मुंबई प्रेसिडेंसी युवक कॉन्फ्रेंस ने अपना सम्मेलन बुलाया। उससे कुछ समय पहले सितंबर में पंजाब छात्र कॉन्फ्रेंस ने लाहौर में सम्मेलन किया और इसके उपरांत एक अखिल भारतीय छात्र कॉन्फ्रेंस का सम्मेलन मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में लाहौर में बुलाया गया। इस प्रकार ऐसा प्रतीत हो रहा था कि युवा वर्ग स्वतंत्रता संग्राम में कुछ न कुछ करने को उद्यत था। 1929 का कांग्रेस अधिवेशन और पूर्ण स्वराज की मांग। दिसंबर 1929 में लाहौर में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ। इस बीच अपने रचनात्मक कार्यक्रमों को लेकर गांधी ने सारे देश का दौरा किया। इस दौरान वे आम लोगों के संपर्क में आए। पृष्ठ संख्या 66। एतएव परिस्थिति की गंभीरता को देखते हुए गांधी को अध्यक्ष बनाने के पक्ष में करीब करीब सर्वसम्मति थी। प्रांतीय कमेटियों ने सभापति पद के लिए गांधी के नाम की सिफारिश की, किंतु गांधी ने उसे मंजूर नहीं किया, बल्कि अपनी जगह जवाहरलाल नेहरू को अध्यक्ष बनाने के पक्ष में अपना मत प्रकट किया। अंततः यह अधिवेशन जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ, जिन्होंने कांग्रेस में नया उत्साह उत्पन्न कर दिया। इस अधिवेशन में नेहरू रिपोर्ट में घोषित औपनिवेशिक स्वराज के लक्ष्य को रद्द कर दिया गया और यह घोषित किया गया कि अब कांग्रेस का लक्ष्य पूर्ण स्वराज होगा। नेहरू ने अपने अध्यक्षीय भाषण में कहा, आज हमारा लक्ष्य सिर्फ स्वाधीनता प्राप्त करना है। हमारे लिए स्वाधीनता है पूर्ण स्वतंत्रता। सत्याग्रह संबंधी प्रस्ताव में राष्ट्र से रचनात्मक कार्यक्रम को उत्साहपूर्वक करने का अनुरोध किया गया और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटियों को अधिकार दिया गया कि जब और जहां चाहे आवश्यक प्रतिबंधों के साथ सविनय अवज्ञा तथा करबंदी कार्यक्रम प्रारंभ कर दे। 31 दिसंबर 1929 की आधी रात को भारतीय स्वाधीनता का तिरंगा झंडा फहराया गया। इस तरह सन 1930 की शुरुआत में, जहां सर जॉन साइमन भारत के लिए संवैधानिक सुधार के प्रस्ताव बनाने में व्यस्त थे, वहीं ब्रिटिश सरकार गोलमेज सम्मेलन को अंतिम रूप देने के लिए वचनबद्ध थी। कांग्रेस ने देश के लिए पूर्ण स्वाधीनता प्राप्त करने के उद्देश्य से सविनय अवज्ञा आंदोलन की तैयारी शुरू कर दी। सन 1929 की कांग्रेस द्वारा नियुक्त कार्य समिति ने जनवरी 1930 के शुरू में एक प्रस्ताव पास करके सभी प्रांतीय कांग्रेस कमेटियों को 26 जनवरी को पूर्ण स्वाधीनता दिवस मनाने का निर्देश दिया। साथ ही यह आदेश भी दिया गया कि उस दिन जगह जगह लोग इकट्ठे होकर कांग्रेस का झंडा फहराएं और सर्वसम्मत प्रतिज्ञा पत्र सामूहिक रूप से पढ़ें। इस प्रतिज्ञा पत्र में कहा गया था कि यदि कोई सरकार हमारी स्वतंत्रता, श्रम के फल तथा जीवन निर्वाह की आवश्यक सुविधाएं छीन लेती है, तो उसे बदल देने या नष्ट कर देने का हमें पूरा अधिकार है। प्रस्ताव में कहा गया था, ब्रिटिश शासन को अब स्वीकार करना मनुष्य और ईश्वर दोनों के प्रति अपराध करना है। 26 जनवरी को बड़े उत्साह के साथ लोगों ने प्रथम स्वाधीनता दिवस मनाया। लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पास करते समय इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कोई योजना नहीं बनाई गई थी और न ही आगामी वर्ष के लिए कोई कार्यक्रम तैयार किया गया था। पृष्ठ संख्या 67। सुभाष चंद्र बोस ने प्रस्ताव पेश किया था कि कांग्रेस का लक्ष्य देश में समानांतर सरकार कायम करना होना चाहिए। इसके लिए मजदूरों, किसानों और नौजवानों को संगठित करना चाहिए, किंतु यह प्रस्ताव पास नहीं हो सका। जवाहरलाल नेहरू ने इस संदर्भ में लिखा है कि भविष्य के बारे में हमारे सामने अब भी कुछ स्पष्ट नहीं था। कांग्रेस अधिवेशन में प्रदर्शित उत्साह के बावजूद कोई यह नहीं जानता था कि संघर्ष के कार्यक्रम में देश के लोग कहाँ तक साथ चल सकेंगे। हम जिस स्थल पर पहुंच गए थे, वहां से अब लौट नहीं सकते थे, पर आगे का रास्ता हमारे लिए अज्ञात था। अहिंसात्मक आंदोलन की प्रासंगिकता। तीव्रता से बदलते इस घटनाक्रम को ध्यान में रखते हुए गांधी इस परिणाम पर पहुंचे कि लोग स्वतंत्रता के लिए अधीर हैं, किसी न किसी प्रकार की हिंसात्मक घटना घट सकती है। ऐसी स्थिति में उनका कर्तव्य है कि वह इस आंदोलन को अहिंसात्मक रूप प्रदान करें। गांधी के अनुसार केवल सविनय अवज्ञा ही देश को आने वाली अराजकता और छुपे हुए अपराधों से बचा सकती थी।